ये है पॉडकास्ट आशा की किरण, जहाँ पर आपको मिलेगी ढेर सारी खुशियाँ, उम्मीदें, आशाएं, उमंग, उत्साह, सकारात्मक सोच। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके जीवन में उम्मीदों का एक नया सूर्योदय आशा की किरण के साथ। इसे लेकर आऊंगी मैं किरण। प्रकार मन और इंद्रियों के संयम न करने में हानि और संयम करने में लाभ दिखलाकर स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने के लिए राग द्वेष के त्याग पूर्वक मन सहित इंद्रियों के संयम की विशेष आवश्यकता का प्रतिपादन करके स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन किया। अब साधारण विषयासक्तों में और मन इंद्रियों का संयम के परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि संयम महापुरुष में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन के दृष्टांत से समझाते हुए या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेह। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जानता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व के लिए वह रात्रि के समान है। यहाँ संयमी पद किसका वाचक है? जो मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकरण में स्थित प्रज्ञ के नाम से वर्णन हुआ है, उसी का वाचक यहाँ संयमी पद है, क्योंकि उत्तरार्ध में उसी के लिए पश्यतः पद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ ज्ञानी होता है। यहाँ संपूर्ण प्राणियों की रात्रि के समान क्या है और उसमें स्थित प्रज्ञ योगी का जागना क्या है? अज्ञानी और ज्ञानियों के अनुभव में रात और दिन के सदृश अत्यंत विलक्षणता है। यह भाव दिखलाने के लिए रात्रि के रूपक से साधारण अज्ञानी मनुष्यों की और ज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ रात्रि का अर्थ सूर्यास्त के बाद होने वाली रात्रि नहीं है, किंतु जैसे प्रकाश के पूर्ण दिन को उल्लू अपने नेत्र दोष से अंधकारमय देखता है, वैसे ही अनादि सिद्ध अज्ञान के पर्दे से अंतःकरण रूप नेत्रों की विवेक विज्ञान रूप प्रकाशन शक्ति के आवृत्त रहने के कारण अविवेकी मनुष्य स्वयं प्रकाश नित्य बोध परमानंदमय परमात्मा को नहीं देख पाते। उस परमात्मा की प्राप्ति रूप सूर्य के प्रकाशित होने से जो परम शांति और नित्यानंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह वास्तव में दिन की भांति प्रकाशमय होते हुए भी परमात्मा के गुण प्रभाव रहस्य और तत्व को न जानने वाले अज्ञानियों के लिए रात्रि है, यानी रात्रि के समान है, क्योंकि वे उस ओर से सर्वथा सोए हुए हैं और सर्वदा सोए हुए हैं। उनको उस परमानंद रात्रि परमात्मा को प्राप्त संयमी पुरुष के लिए दिन के समान है। स्थित प्रज्ञ पुरुष का, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करके निरंतर उसी में रहता है, उसी में स्थित रहना है, यही उसका उस संपूर्ण प्राणियों की रात्रि में जागना है। संपूर्ण प्राणियों का जागना क्या है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, वह परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान कैसे है। यद्यपि इस लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं सब नाशवान हैं, क्षणिक, अनित्य और दुख रूप हैं, तथापि अनादि सिद्ध अंधकारमय अज्ञान के कारण विषयासक्त मनुष्य उनको नित्य और सुख रूप मानते हैं। उनकी दृष्टि में विषय भोग से बढ़कर और कोई सुख ही नहीं है। इस प्रकार भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना और उनकी प्राप्ति में आनंद का अनुभव करना, यही उन संपूर्ण प्राणियों का उनमें जागना है। यह इंद्रिय और विषयों के संयोग से तथा प्रमाद, आलस्य और निद्रा से उत्पन्न सुख रात्रि के भांति अज्ञान रूप अंधकारमय होने के कारण वास्तव में रात्रि ही है। तो भी अज्ञानी प्राणी इसी को दिन समझकर इसमें वैसे ही जाग रहे हैं जैसे कोई नींद में सोया हुआ मनुष्य स्वप्न के दृश्यों को देखता हुआ स्वप्न में समझता है कि मैं जाग रहा हूँ, किंतु परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में जैसे स्वप्न में जगे हुए मनुष्य का स्वप्न के जगत में कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती। यह ज्ञानी उस दृश्य जगत के स्थान में उसके अधिष्ठान रूप परमात्म तत्व को ही देखता है, अतएव उसके लिए समस्त सांसारिक भोग और विषयानंद रात्रि के समान है।
अतः बाहुबल वीर जिसकी सारी इंद्रियां वश में रहे धर धीर, बुद्धि उसी की स्थिर रहे। सब जीवों के चुन साजो तंद्रा में जाने का समय है, आत्म संयमी उसमें जागे इस सिद्धियों के पाने का समय है। सब जीवों के जागने का जो चेतना में आने का समय है, आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए वह रात्रि है सुस्ताने का समय है, आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए वह नीरव हो जाने का समय है।
इस प्रकार रात्रि के रूपक से ज्ञानी और अज्ञानियों की स्थिति का भेद दिखलाकर अब समुद्र की उपमा से यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला अज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति यद्वत तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांति माप्नोति न काम कामी। अर्थात जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। स्थित प्रज्ञ ज्ञानी के साथ समुद्र की उपमा देकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है? किसी भी जड़ वस्तु की उपमा देकर स्थित प्रज्ञ पुरुष की वास्तविक स्थिति का पूर्णतया वर्णन करना संभव नहीं है, तथापि उपमा द्वारा उस स्थिति के किसी अशंक लक्ष्य करवाया जाता है। अतः समुद्र की उपमा से यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार समुद्र आपूर्यमाणम यानी अथाह जल से परिपूर्ण हो रहा है, उसी स्थित प्रज्ञ अनंत आनंद से परिपूर्ण है। जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष को भी किसी सांसारिक सुख भोग की तनिक मात्र भी आवश्यकता नहीं है, वह सर्वथा आप्त काम है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या नाना प्रकार से नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति में विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत सर्वे विशेषण के सहित कामाह पद यहाँ किनका वाचक है और उनका समुद्र में जलों की भांति स्थित प्रज्ञ में समा जाना क्या है? यहाँ सर्वे विशेषण के सहित कामाह पद काम्यंत इति कामाह अर्थात जिनके लिए कामना की जाए उनका नाम काम होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का वाचक है, इच्छाओं का वाचक नहीं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ पुरुष में कामनाओं का तो सर्वथा अभाव ही हो जाता है, फिर उनका उसमें प्रवेश कैसे बन सकता है? अतएव जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता न रहने पर भी अनेक नद नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश करते रहते हैं, परंतु नदी और सरोवरों की भांति न तो समुद्र में बाढ़ आती है और न वह अपनी स्थिति से विचलित होकर मर्यादा का ही त्याग करता है, सारे के सारे जल प्रवाह उसमें बिना किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न किए ही विलीन हो जाते हैं। वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष को किसी भी सांसारिक भोग की किंचित मात्र भी आवश्यक उसे प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात उसके मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल विषयों का संयोग होता रहता है, परंतु वे भोग उसमें हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह भय और द्वेग या अन्य किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न करके उसे उसकी अटल स्थिति से या शास्त्र मर्यादा से विचलित नहीं कर सकते। उनके संयोग से उसकी स्थिति में कभी किंचित मात्र भी अंतर नहीं पड़ता, बिना किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न किए ही उसके परमानंदमय स्वरूप में तद्रूप होकर विलीन हो जाते हैं। यही उनका समुद्र में जलों की भांति स्थित प्रज्ञ में समा जाना है। परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि जो उपयुक्त प्रकार से आप्त काम है, जिसको किसी भी भोग की जरा भी आवश्यकता नहीं, जिसमें समस्त भोगों के प्रारब्ध के अनुसार अपने आप आकर विलीन हो जाते हैं, और जो स्वयं किसी भोग की कामना नहीं करता, वही परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना वाला मनुष्य कभी शांति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसका चित्त निरंतर नाना प्रकार की भोग कामनाओं से विक्षिप्त रहता है, और जहाँ विक्षेप है वहाँ शांति कैसे रह सकती है? वहाँ तो पद पद पर चिंता, जलन और शोक ही निवास करते हैं।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः।
58वीं से लेकर इस श्लोक तक अर्जुन के तीसरे प्रश्न का ही उत्तर माना जाए तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इस श्लोक में समुद्र की भांति अचल रहने का उदाहरण दिया गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं माना जा सकता। तीसरे प्रश्न का उत्तर 58वें श्लोक से आरंभ करके 61वें श्लोक में समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए उसमें आसीत पद आता है। इसके बाद प्रसंगवश 62वें और 63वें श्लोकों में विषय चिंतन से आसक्ति, इसलिए उसमें आसीद पद आता है। इसके बाद प्रसंगवश 62वें और 63वें श्लोकों में विषय चिंतन से आसक्ति आदि के द्वारा अधः पतन दिखलाकर 64वें श्लोक में चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। चरण पद से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। इसी सिलसिले में नौका के दृष्टांत से विषयासक्त अयुक्त पुरुष की विचरती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के द्वारा बुद्धि के हरण किए जाने की बात आई है। इसमें भी चरताम पद आया है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में सर्वे कामाः प्रविशन्ति पदों में यह कहा गया है कि संपूर्ण भोग उसमें प्रवेश करते हैं। अक्रिय अवस्था में तो प्रवेश के सब द्वार ही बंद हैं, क्योंकि वहां इंद्रियां विषयों के संसर्ग में रहती हैं। यहां इंद्रियों का व्यवहार है, इसीलिए भोगों का उसमें प्रवेश संभव है। उसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति है, परंतु व्यवहार में यह अक्रिय नहीं है। अतएव यहाँ चौथे प्रश्न का उत्तर मानना ही युक्ति युक्त है।
कृष्णाय वासुदेवाय।
सिंधु में अविरल नदियों के प्रवेश कर जाने पर विचलित नहीं होता इच्छाओं की प्रबल बाढ़ के आने पर, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वही स्थिर हो समय बिताता है, वह नहीं कि इच्छाओं की तुष्टि को जो अतिष्ट हो जाता है।
ये है पॉडकास्ट आशा की किरण, जहाँ पर आपको मिलेगी ढेर सारी खुशियाँ, उम्मीदें, आशाएं, उमंग, उत्साह, सकारात्मक सोच। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके जीवन में उम्मीदों का एक नया सूर्योदय आशा की किरण के साथ। इसे लेकर आऊंगी मैं किरण।